ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सार्क की प्रासंगिकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजनयिक वीना सिकरी और पत्रकार शुभाजीत रॉय।
30 साल से ज्यादा हो गए हैं जब सार्क एस्टैब्लिश किया गया है। 1985 में 8 दिसंबर के ही दिन सार्क को एस्टैब्लिश किया गया था। अंबेडकर सिकरी, अगर मैं कहूं कि 30 साल से ज्यादा हो गए हैं सार्क को बने हुए, आपको लगता है कि ये इस रीजन में एक इफेक्टिव ग्रुपिंग रहा है या फिर जो उसका पोटेंशियल था उसको अचीव नहीं कर पाए हैं?
सार्क तो एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक अच्छा ग्रुपिंग है, लेकिन पोटेंशियल जरूर फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल इसके बारे में दूं कि जब मैं ढाका में हाई कमिश्नर थी तो सार्क समिट हुई थी, उसी सार्क समिट के जुड़े हुए होम मिनिस्टर्स की पहली बार मीटिंग हुई थी, क्योंकि उससे पहले होम मिनिस्टर की मीटिंग कभी हुई नहीं थी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो इश्यू था वो तब टच नहीं हुआ था, और होम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और हेड्स ऑफ पुलिस, क्योंकि हर एक देश में डायरेक्टर जनरल पुलिस है, उनकी भी मुलाकात हुई थी। ये जो एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी आप जानते हैं कि आजकल सिक्योरिटी के बिना पीस और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जो अभी आप डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज अगर बिगड़ जाएं, पीस खराब हो जाती है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। इसलिए अगर सार्क को आगे बढ़ना है तो बहुत जरूरी है कि सार्क देशों के बीच इंटरनल सिक्योरिटी की जो कोऑपरेशन, जिसकी शुरुआत तब हुई थी 2005-06 में, उसे आगे ले जाना चाहिए और उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि सारे सार्क देश वो इसे स्वीकार करें कि पीस एंड सिक्योरिटी एक सबसे एसेंशियल फीचर है नेशनल डेवलपमेंट की। हर एक देश चाहता है, हर एक लीडर चाहता है कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो, लोगों की आमदनी बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने, लेकिन ये सब कैसे होगा अगर पीस और सिक्योरिटी सरकार जो है उसको अश्योर नहीं कर सके। और अगर टेररिस्ट ऐसे हैं जो गैर मुल्क से आ रहे हैं और आपके देश में लोगों की जिंदगी को इतनी मुश्किलियां जा रहे हैं, ये हाल में हमने बॉम्बे अटैक की 10वीं सालगिरह मनाई थी इतने शोक के साथ कि लोग इतने लाचार थे, कैसे हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद स्वीकार किया कि वो टेररिस्ट अटैक था और उसका असर जो है आज तक हम देख रहे हैं। तो ऐसे अगर टेररिस्ट अटैक हमारे सोल्जर्स जो हैं बॉर्डर पे, जो अपनी जान गंवा रहे हैं भारत की सुरक्षा के लिए, जरूर हमको उनकी मदद करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये ऐसे टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, क्यों नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स जो भी हैं बाहर से आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये कमिटमेंट कि ऐसे नहीं होगा, ये एक बहुत ऑलमोस्ट प्री कंडीशन हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज, हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि इन 33 सालों में साथ में प्रोग्रेस तो हुआ है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट जरूर बने हैं, काउंटर टेररिज्म पे डॉक्यूमेंट बना है, प्रोटोकॉल ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन टू प्रिवेंट दैट वो बना है, साफ्टा सार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू हो गया है, लेकिन उसमें अगर प्रोग्रेस कैसे होगा जब तक पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दे रहा है। तो हर एक चीज में जो अड़चन आ रही है लगता है कि सिर्फ एक देश से आ रही है, उम्मीद है कि वो देश अब स्वीकार करे कि वो कमिटमेंट उनकी है। अगर वो पाकिस्तान ने सार्क समिट होस्ट करना चाहते हैं, वाजिब है कि इस मौके पे उनको कमिटमेंट देना चाहिए दैट दे आर कमिटेड टू द स्पिरिट ऑफ सार्क।
आपने सही फरमाया इस बारे में। मैं 2014 में काठमांडू गया था जब पिछला सार्क समिट वहां पे हुआ था, उस वक्त से लेकर अब 2018 हो गए हैं। 2016 में सार्क समिट होने वाला था इस्लामाबाद में, पर इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश सभी लोगों ने वर्कआउट किया क्योंकि उरी अटैक उससे ठीक पहले हुआ था सितंबर के महीने में। तो आपको लगता है कि 4 साल गुजर गए, अब जब समिट नहीं हो रहा है किसी ग्रुपिंग का, इससे इस ग्रुपिंग की जो रेलेवेंस है वो कम होती जाती है, आप कैसे देखते हैं?
अब मैं सोचती हूँ कि रीजनल कोऑपरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे अमल किया जा सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब काठमांडू समिट में गए थे 2014 में, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की कमिटमेंट नेशन को है और अगर अन्य देश हमारे साथ आए तो हम उनको खुशी से साथ लेके आगे बढ़ेंगे, अगर कोई देश नहीं आना चाहे तो हम उनके बिना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि रीजनल कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट किसी एक देश की वजह से रुक जाए। अब देखिए आज की तारीख में भी काठमांडू में सार्क बिजनेस लीडर्स फोरम हो रहा है, उधर भी शायद कोई एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन के डिस्कशन हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि सार्क का काम बिल्कुल बंद है, सेक्रेटेरिएट बहुत एक्टिव है, काठमांडू में और वहां पे मीटिंग्स होते रहते हैं। ऐसी चीजें हैं, भारत ने जब साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया तो ये एक कमिटमेंट था कि डिस्टेंस मैपिंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों के लिए उनका उस सैटेलाइट का फायदा होगा। लेकिन हमें उसका नाम साउथ एशिया सैटेलाइट इसलिए देना पड़ा कि पाकिस्तान साथ आने में तैयार नहीं था, तो साथ सैटेलाइट नहीं कह सकते थे उसे, और साउथ एशिया सैटेलाइट के लिए कोई बात नहीं, साउथ एशिया सैटेलाइट है, अन्य देशों की सहायता उससे हो रही है तो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक्टिविटीज जो है वो बढ़ रही है, बिम्स्टेक की कोऑपरेशन बढ़ रही है। अगर ये बिम्स्टेक एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने की कोशिश में है, और ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। म्यांमार उसमें है, थाईलैंड उसमें है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब उसमें आ गए हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2016 में बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान वो सब साथ आ गए, क्योंकि इन देशों में भी टेररिज्म इनिशिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान उसका बुरा असर दिख रहा है। अफगानिस्तान में रोज टेरर अटैक होते हैं और वो टेररिस्ट जो है वापस पाकिस्तान में चले जाते हैं। जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान को, देखिए हम जानते हैं कि ऐसे हो रहा है, अगर आप चाहते हैं हम इसमें मदद कर सकते हैं, जो टेररिस्ट आपके देश में वापस आ रहे हैं उनको पकड़िए। बांग्लादेश ने भी देखा है कि उनमें वहां उस देश में जो भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उनकी शुरुआत कहां से हो रही है, तो सारे देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसलिए अगर नई सरकार पाकिस्तान में चाहती है, अगर ये सरकार चाहती है कि रीजनल कोऑपरेशन का एजेंडा आगे बढ़े, तो उन्हें ये भी कमिटमेंट लेना होगा कि वो किसी टेररिस्ट एक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। दुनिया भर जानती है, यूएन जानते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा और जमात दावा जो यूएन सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी तक उधर फ्रीली एक्टिव, उनके एक्शन चली जा रहे हैं, उनके लीडर्स खुलेआम घूम रहे हैं। ये सब चीजें पे विचार करने का बहुत महत्वपूर्ण मौका है। मेरे ख्याल पाकिस्तान की आवाम को ये समझाना चाहिए कि ये रिलीजन की बात नहीं है, क्योंकि टेररिज्म जो है इट शुड नॉट बी लिंक टू रिलीजन, इट इज जस्ट टेररिज्म। लोग मरते हैं, अब अफगानिस्तान में जो लोग मर रहे हैं वो सब मुसलमान लोग हैं, फिर भी टेररिस्ट अटैक हो ही जा रहे हैं।
जैसे आपने समझाया हमें अभी, बहुत लोगों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बातचीत नहीं हो रही है और ये जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल जो समस्याएं हैं, इसके वजह से सार्क जो है वो अब जैसे हॉस्टेज हो गया है, ये मानना क्या सही रहेगा या कैसे आप देखते हैं इस चीज को?
मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन से हॉस्टेज हुआ है, मैं कहूंगी कि टेररिज्म से वजह से हॉस्टेज हुआ है। और टेररिज्म का इशू एक ऐसा बड़ा इशू है कि इसका असर आवाम पे पड़ता है। हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे जो अपनी जाने खो रहे हैं, टेररिस्ट इनसे मुंबई में हुआ था और उरी में और अलग अलग एरियाज में, तो इसमें आम लोग मर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं ये हम क्यों, उन्हें सब पता है कि कहां से ये सब आ रहा है टेररिज्म। तो कहते हैं कि अगर आप टेररिज्म के ऊपर अपनी आंख बंद करें और सार्क की मीटिंग्स करना शुरू करें, तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो बिल्कुल साबित हो गया है। क्योंकि ये नहीं कि भारत सरकार ने ऐसी कोशिश नहीं की है, हमने कोशिश की है कि चलो टेररिज्म मुंबई के अटैक के बाद टॉक से शुरू हो गई थी, अब फिर वो हुआ, इसलिए अब सरकार ने निर्णय किया है कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। और अगर किसी वजह से किसी तरीके से ये टेररिज्म की इंसिडेंस कम हो जाए, ये खत्म हो जाए बिल्कुल, तब टॉक्स का होप है। और सार्क इज नॉट हॉस्टेज इन दैट वे, सार्क का समय जरूर हो नहीं रहा है लेकिन सार्क की मीटिंग्स तो हो रही है, सार्क के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना हम चाहते हैं तो जरूर हम कर सकते हैं, हर एक देश कर सकता है।
चार साल हो गए हैं सार्क समिट को, अब आपको लगता है अब नए प्रधानमंत्री आए हैं उधर पाकिस्तान में, मैं करतारपुर था पिछले हफ्ते, वहां से काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं, आपको लगता है 2019 में सार्क समिट होने की पॉसिबिलिटी है?
2019 में अगर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना और सेना अध्यक्ष दोनों इसमें अग्रीड हैं, दोनों की सहमति है कि वाकई में टेररिज्म हम बंद करें, तो जरूर क्यों नहीं हो सकता। अगर वो 2019 के पहले 6-8-10 महीनों में दिखाएं कि वाकई हमारी ये सहमति है और हम टेररिस्ट इंसिडेंट को नहीं अलाउ करेंगे, तो क्यों नहीं, जरूर 2019 में समिट हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद अंदाजी सीकरी,
शुक्रिया।
सामायिकी में अभी आप सुन रहे थे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सार्क की प्रासंगिकता पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी पूर्व राजनयिक बीना सीकरी और पत्रकार शुभाजीत रॉय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSD Talks@gmail.com।